يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاح إن الله مع الصابرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور پکار کیا ہے، یا ایہا الذین آمنو. جب بھی کبھی کوئی آیت اس عنوان کے ساتھ شروع ہو تو اپنے آپ کو چیک کیا کریں اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان دیا اور اس کی نسبت سے پکارا. اعمال تو انسان بہت سارے کرتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اے وہ لوگوں جو نمازیں پڑھتے ہو، اے وہ لوگوں جو روزے رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو صبر کرتے ہو. کیا کہا؟ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیونکہ ایمان جو ہے نا، وہ انسان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو بندے کو ایمان کے قابل کرتی ہے. پیچھے ہم نے قبلے کی تبدیلی کی بات دیکھی، امت مسلمہ کو امت وسط بنائے جانے کی خوشخبری سنی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول کے ناطے سے اور ایک استاد کے ناطے سے بھیجا جانا دیکھا، اور ذمہ داریاں دیتے دیتے امت مسلمہ کو اب تربیت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے. وہ کون سے کام ہیں جو کوئی قوم کرے گی تو وہ منصب امامت کا ادا کرے گی؟ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ استعین بالصبری والصلا، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر اس کا ربط دیکھیں تو اشارہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی پر مخالفین نے جو اعتراضات کیے، شوشے اٹھائے، پروپیگنڈا کیا، اس کے جواب میں ریئیکشنری نہ ہونا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینا. اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی تربیت کر دی گئی کہ دیکھو، کبھی بھی تمہارے دین پہ، تمہارے لیڈر پہ، تمہارے بڑوں پہ کوئی بھی کوئی بات کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ استعین بالصبری والصلاح، مدد طلب کرو اللہ سے. جب انسان خود کچھ نہ کر سکے تو اس وقت اس کے اوپر معاملہ ڈال دینا چاہیے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں صبر کی بات کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ پانچویں رکوع کی 7 آیات کو بنی اسرائیل کے ناطے سے ہم لوگ سن چکے. وہاں بھی یہی بات تھی کہ واستعین بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یہی حکم کل بنی اسرائیل کو ملا تھا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. آج امت مسلمہ سے بھی یہی تقاضا ہے کہ کل یہود کو ہم نے ایک موقع دیا تھا، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. تم اگر امت بن کے جینا چاہتے ہو تو آؤ تم بھی صبر سے کام لو. کیا ہوگا؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. اب ذرا تھوڑا سا الفاظ کو ساتھ دیکھیں گے. استعین بالصبر کی بات ہوئی، استعین ہم دیکھ چکے نستعین میں، صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا لفظ سواد با را سے ہے، صبر. سواد با را کا لفظی معنی ہوتا ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روکنا، قابو پانا، ناگوار حالات میں ریئیکشن شو نہیں کرنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھو. اصل میں صبر جو ہے نا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. صبر نہ ہو تو ایک اللہ کی ذات پہ انسان راضی نہیں رہ سکتا، صبر نہ ہو تو اللہ کے دیے ہوئے دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. صبر ہی کا دوسرا نام استقامت ہے، صبر ہی کا دوسرا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے. کیونکہ صبر نہ ہو تو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے خود ہی دوسروں کو کوئی نہیں دے سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر اندر کا جہاد ہے اور صلات اعضاء کا جہاد ہے. یہاں ربط ہے دونوں میں، صبر اور نماز میں. کیونکہ صبر سب کاموں میں سے مشکل کام ہے نفس کے لیے، اور نماز ساری عبادات میں سے مشکل عبادت ہے. پوری نماز صبر سکھاتی ہے، मसलन नफ्स का क्या दिल चाहता है? खाने को, सोने को, बातें करने को। क्या हम नमाज में खा सकते हैं, सो सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चलने फिरने को दिल चाहे तो फिर सकते हैं? तो गोया के दिन में 5 बार उम्मते मुस्लिमा को नमाजों में जो चीज़ सिखाई जाती है वो क्या है? सब्र। क्या आपको लगता है अपने इर्द गिर्द देख कर कि ये 5 दफ़ा के ट्रेनिंग सेशन से गुजरने वाली कौम है? खाना ही खुल जाए तो फिर ही देखिए कि सब्र का क्या हाल होता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हर वो काम करने का हुक्म दिया जो उसके लिए अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए मददगार हो। लेकिन बात क्या है कि जब सब्र आता है ना तो फिर ये बातें समझ आती हैं। और यहाँ सब्र करके असल में बता दिया कि ईमान की हिफाजत सब्र के जरिए कर लो। हम दुनिया में आए ही टेस्ट के लिए, और टेस्ट के साथ ही मुसीबत और मुश्किल का वक्त समझ आता है। तो जब सब्र नहीं होगा तो हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए कहा कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वालों के साथ है। नहीं, सब्र वालों के साथ। क्यों? अल्लाह ताला की माइयत दो तरह की होती है। एक होती है माइयत आमा, आम लोगों के लिए कॉमन किस्म की क्लोजनेस। ये तो हर एक के साथ है अल्लाह ताला की। अइनमा तकूनू, तुम जहां भी होते हो अल्लाह तुम्हें देखता है। सूरह मुजादला में आता है, जब तुम दो होते हो तो तीसरा अल्लाह है, तीन होते हो तो चौथा अल्लाह की ज़ात है। तो वो तो है माइयत साथ वाली। उसमें भी याद रखिए कि वो जिस्मानी माइयत नहीं होती। अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ साथ में आसमान पे हैं, लेकिन बंदों के हालात को जानते हैं, उसकी खबरगिरी करते हैं हर जगह। दूसरी किस्म होती है माइयत खासा, खास किस्म की माइयत। ये होती है मदद के मानों में, और यहाँ दूसरी मुराद है। इन्नल्लाह मा साबिरीन से मुराद है कि अल्लाह सब्र वालों की मदद करता है, अल्लाह ताला उनका साथ देता है। जैसे बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम का साथ दिया, जिस तरह जिंदगी भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया अल्लाह ताला की मदद के साथ किया, तो लिहाजा नमाज और सब्र हर मुश्किल और तकलीफ का इलाज है। जिंदगी में ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान फितनों से बच के रहे। ना हम इनको रोक सकते हैं, ना हम इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और वो वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामला था। रिवायत में आता है कि जब भी कभी कोई ज़रूरत पेश आती तो आप नमाज की तरफ रुजू करते, क्योंकि आपको पता था कि नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद तलब की जाती है। सब्र मुश्किलात को बंद करने का आप कहने के जरिए है, मुसीबतों को दूर करने का जरिए है। और जिसके अंदर सब्र नहीं है वो हर वक्त खुद भी मुश्किल में होगा और दूसरों को भी मुश्किलात में रखेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सब्र कहते किसको है, यानी अमली सूरतें कौन सी होंगी? तो सब्र के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। सब्र का अगर आप एक दर्जा लें तो वो तो क्या है कि अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से रुकना। हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया, उसके रुकने में जो मुश्किल आती है ना, ये भी सब्र है। मसलन गीबत करने को दिल चाह रहा है लेकिन आप अपने आप को रोके हुए, इस रोकने में जो तकलीफ हो रही है ना, ये सब्र है। आपका दिल चाह रहा है कि किसी ने आपको कोई बात सुनाई है और आप आगे से दो सुनाएं, आप सुना भी सकते हैं लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इदफा बिल्लती ही अहसन, मैंने अच्छा ही सलूक करना है, ये सब्र है। दूसरी किस्म होती है इतात के कामों के करने में जो मुश्किल आती है। मसलन नमाज पढ़ते हैं तो मुश्किल आती है ना, रुकू करते हैं कि आप सदका खैरात देते हैं, यानी नेकी के कामों के करने में जो इंसान को तकलीफ होती है उस पे सब्र करना। और तीसरी किस्म होती है मुसीबतों पे सब्र करना, बीमारियों पे, दुखों पे, गमों में, जिसका तذکرہ अगली आयत में भी आ रहा है। इन सब में से मुश्किल कौन सी है? सबसे पहली सबसे मुश्किल है, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि ये सब्र की जो पहली दो किस्में हैं ये तीसरी किस्म से बहुत मुश्किल है। अमूमन हमारे यहाँ सब्र का एक बिल्कुल सती समाना लिया जाता है, कोई मर जाए, खूब रो धो ले कर लो, रो लो धो लो बैन करो, फिर जब थक जाओ तो फिर को अच्छा मैं सबर करती हूँ। हालांकि सबर क्या है? पहली चोट पे सबर। एक औरत किसी कब्र पे बैठी रो रही थी और बैन कर रही थी, अल्लाह के नबी सल्लम पास से गुजरे, उसने नहीं पहचाना। आपने उसको नसीहत की कि सब्र करो, तो बदतमीजी या समझ लें कि रौनत के अंदाज में कहने लगी कि जो चोट मुझ पे पड़ी है तुझ पे पड़ती तो तुझे पता चलता। तो आपने उस पे क्या फरमाया था कि इन सब्र इन द सदमतिल उला। सबर तो है ही वो चीज जो पहले सदमे पे किया जाए, चोट पड़े उसी वक्त तो सबर करना है, वक्त के साथ तो खुद ही सबर आ जाता है। हम अपनी जिंदगियों में ढूंढें कि हमें कितने सबर की आदत है और हम कहाँ तक सबर करते हैं, और अगर सबर नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब कि हमारा ईमान कमज़ोर है और हमारी नमाजें हमें उस तरह से सबक सिखा नहीं रही। इसीलिए नमाज को बुराइयों से रोकने का जरिया कहा गया, इन सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। 21वें पारे की पहली आयत का हिस्सा है कि बेशक नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। क्यों? कि जो बंदा दिन में 5 बार प्रैक्टिस कर लेता है बुराई से रुकने की, उसके सामने बुराई हो रही है वो कहते नहीं मुझे नमाज पढ़नी है, उसको दावत मिल रही है गुनाह की वो कहता है मुझे नमाज पढ़नी है, तो उसको अपने ऊपर कितना कंट्रोल आएगा। इसीलिए फिर ये सेल्फ कंट्रोल के मानों में भी आता है, और जो बंदा इस सब्र के ऊपर अपने आप को रखेगा अल्लाह ताला उसको तौफीक भी देगा। रिवायत में आता है कि ये वो नेमत है जो अल्लाह हर एक को नहीं देता। अल्लाह अपने बड़े खास बंदों को सब्र की नेमत देता है, ये सही बुखारी की रिवायत का खुलासा है। और देखा जाए जिसको सब्र मिल गया उसकी दुनिया खूबसूरत हो गई। अमूमन सार जिंदगी में हम बेसब्रियों के मुजाहरे करके ही तो अपने आप को दुखी करते हैं ना। वजह क्या होती है कि फिर हम खुद भी रोते हैं, परेशान होते हैं। तो जिस बंदे के अंदर ठहराव नहीं वो भी बेसब्र है, जिस बंदे के अंदर अपने जज्बात पे काबू नहीं वो भी बेसब्र है, जो अपनी भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता वो भी बेसब्र है, जिसके पेट में बात मचलती है और वो सब्र नहीं कर पाता वो भी बेसब्र है, जो किसी की बुरी बात सुन के आगे से जवाब दिए बगैर रहता ही नहीं है वो भी बेसब्र है, जो दूसरों को देखकर गलत काम करता खुद भी उस बुराई से अपने आप को दूर नहीं रख पाता वो भी बेसब्र है। अब इस पहचान पे हम सारे अपने आप को चेक करेंगे, तिलावत सुनते हैं इस आयत की।
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 154। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया उला किल्ला तशउरून। और न कहो उनको जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए कि वो मुर्दा हैं, बल्कि जिंदा हैं, और लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। सब्र और नमाज की बात करने के बाद अब अल्लाह ताला के रास्ते की शहादत की बात है। फरमाया वला तकूलू, और ना तुम कहो। कौन ना कहें? जो लोग जिंदा हैं। किनको ना कहें? लिमई युक्तलु फी सबीलिल्लाही, जो मारे गए अल्लाह के रास्ते में। क्या ना कहो? अमवात, के वो मुर्दा हैं। मैयत की जमा है अमवात, के वो लोग मुर्दा हैं। क्या हकीकत है उनकी? बल अहया उन, बल्कि वो जिंदा हैं। हैयुन की जमा है, यानी वो सब जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। किस चीज़ का शऊर नहीं रखते? उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। यहाँ से शुहदा के बारे में बात हो रही है, और यही बात आगे सूरत आले इमरान में भी आएगी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उसके बाद पहले गज़वे बदर हुई, फिर उसके बाद गज़वे उहद हुई। तो जब कुछ लोग मैदान जंग में मारे जाने लगे तो उस वक़्त ये सवाल पैदा हुआ कि वो लोग जो फौत हो जाते हैं हम उनके बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि इंसान हर जाने वाले के बारे में ही सोचता है कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन शुहदा जो अल्लाह के दीन के लिए اپنی جانیں تک کٹا دیتے ہیں، ان کی بات جہاں کر کے بتا دیا کہ ایسے لوگ ایک اتنے بڑے مقصد کے لیے اپنی جان دے گئے کہ جو مقصد ابھی زندہ ہے۔ کیوں نہ کہو ان کو مردہ، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مقصد ابھی زندہ ہے جس کے لیے انہوں نے جان دی، اور وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ اور دوسری وجہ ان کی عزت اور ان کے احترام کی وجہ سے ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 169 سے 171 میں بھی اسی کا تذکرہ دوبارہ آئے گا مزید تفصیل کے ساتھ، لیکن ابھی ہمیں صرف اتنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اپنی جان دینا، یہ آخری درجہ ہے۔ اس کا آغاز علم حاصل کرتے ہی ہو جاتا ہے۔ جو ہی آپ علم حاصل کرنے لگتے ہیں تو ارد گرد والے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، کبھی آپ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، کبھی آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو اللہ کے راستے کی طرف آتے ہی شروع ہوتی ہیں، یہ اس بڑی شہادت کی تمہیدیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اقرأ باسم ربی کا کہہ کر جو حکم دیا تھا، وہ اصل میں کلمہ شہادت کی گواہی کے لیے تیاری کا حکم تھا۔ تو لہٰذا دو طرح کے مجاہد ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو تلوار پکڑ کے جہاد کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو قلم پکڑ کے جہاد کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں ان کے اپنی جانوں کو کٹانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو علم کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اگر جان اللہ کے راستے میں کسی کی گولی، تیر، تلوار لگنے سے نہ بھی نکلے، لیکن وہ لوگ اپنے بستروں پہ بھی مریں لیکن ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ امام بخاری کو دیکھ لیجئے، امام مسلم کو دیکھ لیجئے، اور اسی طرح باقی لوگ جو علم کے کام کر گئے، آج بھی ان کے علم زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں۔ تو لہٰذا ہر بندے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہی میں اللہ کے دین کی طرف آتا ہوں سیکھنے یا سکھانے کے لیے، تو گویا کہ میں فی سبیل اللہ میں آ گیا، اور جب تک میرا یہ کام رہے گا اللہ تعالیٰ کی پاس میرا نام بھی رہے گا۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنے کے راستے میں موت آ گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا اجر دے گا، لیکن یہ شرط ایک ہی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا اپنے نام کے لیے نہ ہو، کوئی شہرت کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، اپنے گروہ یا اپنی جماعت یا اپنے ادارے کے نام کو اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ، پہلے تو اپنی جہالت دور کروں گی، عمل کروں گی، اپنی زندگی کے اندر کمیاں جو ہیں ان کو دور کروں گی، اور آہستہ آہستہ پھر اس میں پختگی حاصل کر کے دوسروں کو بھی سکھاؤں گی، ان کو بھی تیری طرف بلاؤں گی۔ یہ کام سراسر شہادت حق کا کام ہے۔ پیچھے امت مسلمہ کو اسی کی بات کہی گئی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت حق کے درجے پہ فائز کر دیا، اور اس سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اور انبیاء، یعنی وہ شخص جو اللہ کے دین کو اس لیے سیکھتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو، اس میں اور انبیاء کرام میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر! وجہ کیا ہے کہ مشن ایک تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے، اور علماء جو ہے وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مشن دونوں کا ایک ہی تھا۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ لا تقولوا، تم نہ کہو ان کو کہ وہ مردہ ہیں۔ کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں اور قبروں میں زندہ ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اس وقت دنیا کی ہے، اس زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ دنیا کے ناطے سے تو وہ فوت ہو ہی جاتے ہیں، تبھی تو ان کی بیویاں بیوہ کہلاتی ہیں اور ان کے بچے یتیم بن جاتے ہیں۔ اگر شہید زندہ ہو اس دنیا کے ناطے سے، تو پہلی بات ہے کہ اس کی بیوی کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہ ہو، جیسے کہ ایک شادی شدہ عورت ایک ہی وقت میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بچے یتیم نہ ہوں، ان کی جائیداد نہ بٹے، ان کا ورثہ نہ بٹے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی قبر کی زندگی ہے، اور شہداء اور انبیاء کرام کی برزخ کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہاں وہ ثواب اور عذاب کو جو عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، برزخ کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، और बरज़खी ज़िंदगी का हम यहाँ बैठ के 100% अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम तो इस दुनिया में रहते हुए भी एक जगह से उठ के दूसरे मुल्क में जाते हैं तो पहले से अंदाज़ा नहीं लगाते कि वहाँ ज़िंदगी कैसी होगी। एक गांव में रहने वाला, किसी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में रहने वाले की ज़िंदगी का, उसकी सहूलतों का जायज़ा नहीं लगा सकता। इसी तरह जो लोग बहुत नेमतों में रहते हैं और बहुत उनकी ज़िंदगी में आसाइशें हैं, लेकिन वो उन लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जहाँ बिजली और पानी भी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह मरने के बाद जो बरज़ख की ज़िंदगी है, पहली बात है कि हम उसके बारे में हकीकत में नहीं जानते। जो चीज़ सही रिवायात से हमें मिलती है वो यही मिलती है कि हर मरने वाले को बरज़ख में एक ख़ास किस्म की हयात मिलती है, जिसकी वजह से वो कब्र में सवाब या अजाब को महसूस करता है। इसमें मोमिन, काफिर, साले, फासिक, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, हयात बरज़खी के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक दर्जा वो होता है जो उसमें आम लोग हैं, हर एक इंसान, आम लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ मखसूस दर्जे अंबिया कराम के और सालेहीन के और उसी के अंदर भी शुहदा के होते हैं। यहाँ शहीद की बात कर दी गई कि वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, उसने अपनी जान देकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले कलमे की गवाही दी कि अल्लाह, मैं अपने इस कलमे की गवाही में इतना सच्चा था कि मैं इसके लिए जान तक दे सकता हूँ। अल्लाह को एक समझना उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी तरजीह थी कि वो इसकी बुनियाद पे अपनी जान दे देगा, लेकिन हक के आगे यानी बातिल के आगे झुकेगा नहीं, या हक को मुश्किल में नहीं डालेगा। लेकिन अब इससे ये समझना कि शहीदों की कब्रों पे जाएं, वहाँ मन्नतें मानें, दुआएं मांगें और वो हमारी सुनते हैं, अल्लाह ताला ने कह दिया कि ला तशउरून, तुम नहीं समझते। लिहाजा रूहों का वापस आना, इससे ये भी पता चल जाता है कि रूहों का वापस आना ये भी कोई इस्लाम के अंदर नहीं है कि आप उनको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। ये खुद साख्ता अकीदे होते हैं। जो चला गया उसके साथ मामला आगे जाके जो होगा वही होगा। ये ज़िंदगी को एक छोटे से फ़र्क से समझाना चाहूँगी कि जैसे आप देखिए कि हमारा पाँव है ना, एक ज़िंदा इंसान का पूरा पाँव ज़िंदा है, लेकिन आप अगर उसकी उंगलियों की पोरों को टच करें तो एकदम हल्की सी भी चीज़ चुभेगी तो ज़्यादा दर्द होती है ना, लेकिन उसकी एड़ी को अगर टच करें या वहाँ कोई चीज़ चुभ जाती है तो उतनी दर्द नहीं होती। तो ये पोरों की और एड़ियों की ज़िंदगी के अंदर जो फ़र्क है ना, यही फ़र्क बुनियादी तौर पे आलमे बरज़ख़ में मुख्तलिफ दर्जों पे होने वाले लोगों के फ़र्क होते हैं। तो इसलिए हमारी तरफ से वो फौत हो चुके हैं, उसके बारे में कोई भी शक नहीं होना चाहिए। और शहीद की शान बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमें बहुत ज़्यादा बातें प्यारी बताई, लेकिन चूंकि ये टेक्स्ट एज़ अ शहादत सूरत आल इमरान की आयत 169 में आएगा, तो वहाँ हम इंशाल्लाह उन हदीस को कोट करेंगे। यहाँ असल में ये बात सब्र के मद में है, पीछे से जो बात चल रही है उसी के साथ इसका तसलसल है कि बाज़ दफ़ा अल्लाह के रास्ते में इतना भी सब्र करना पड़ता है कि जान तक देनी पड़ती है। वहाँ आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात कहकर ये बात बता दी थी कि तुम्हारा ये ईमान इस्तकामत में ढलेगा, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं तुम पीछे नहीं हटोगे, हत्ता कि अगर जान भी देनी पड़े तो दोगे। और पीछे वालों को कह दिया कि ये शहीद इतने बड़े मकसद के लिए फौत हुए हैं कि तुम इनको मुर्दा ना करो। एक बंदा शहीद होता है तो उसके बाद वो मकसद और ज्यादा जिंदा हो जाता है, लेकिन तुम नहीं समझते। अपना मुहासबा करते हुए यहां तक तिलावत सुनेंगे।
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون